Thank you. पृष्ठाय भूतले
कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी
निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देश तारिणे
पाश्चात्य देश तारिणे
हे कृष्णा करुणा सिंधो
हे कृष्णा करुणा सिंधो
दीन
बंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत
गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमोस्तुते
राधा कांत नमोस्तुते
सप्त कांचन गौरांगी
सप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी
राधे वृंदावनेश्वरी
शुभानु सुते देवी
वृषभानु सुते देवी
प्रणमामि हरि प्रिये
प्रणमामि हरि प्रिये
जय श्री कृष्ण चैतन्य
जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद
प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर
श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
सबको समझ में आती है ना तो मराठी मला येत नाही प्रॉपरली इतना अच्छा तरह से नहीं बोल सकते मराठी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने प्रोग्राम किया आपका नाम जान सकता हूँ सर मैं अजीत चलिए वैसे हम लोग हमारा भी परिचय देने का प्रयास इसीलिए करते हैं कि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं ऐसे बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद प्रभु को और शिवा शक्ति माता जी को जिन्होंने ये कनेक्शन एस्टैब्लिश किया मेरा नाम रसामृत दास है मंदिर का दीक्षित नाम जो है वो और वैसे मेरा नाम रमेश दवे है मैं फर्स्ट गर्ल बैंक में काम करता हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूँ मैं तो अभी पिछले 3 साल पहले इधर अबू धाबी आया और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग हैं जो साथ में हमारे साथ में एक बहुत ही सीनियर डीओटी है गोपी मनोहर प्रभु ये भी बॉम्बे से है लेकिन कई वर्षों से गल्फ में है पहले कतार में थे और अभी यूएई में दुबई में और अभी अबू धाबी में शिफ्ट हुए हैं शिव कुमार प्रभु है ये आईटी सिक्योरिटी मैनेजर है कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह होती है वो सब देखते हैं इतिहाद एयरवेज में काम करते हैं ये गोकुल प्रभु है इज ए इंजीनियर और सुब्बा रेड्डी प्रभु भी हमारे साथ है प्रभु जी आप कहाँ काम करते हैं NPCC में और शरद प्रभु है बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं बहुत अच्छा गाते हैं और अभी इन्होंने यूके से MBA का डिग्री प्राप्त की है तो ये सभी लोग आज हमारे साथ आए हैं मेरे साथ में मेरी वाइफ भी है प्रभु जी की लड़की ओजस्वी माता जी वो भी समझ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया ये जो प्रोग्राम है इसका बड़ा ही महत्व है बहुत तरीके से एक तो यह कि कल से कार्तिक मास का प्रारंभ हुआ है कार्तिक मास से 12 महीने में एक ऐसा महीना होता है जो बहुत ही विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंट और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊँचा माना जाता है तो इस कार्तिक महीने में इसकी कई महिमा है हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने के लिए तो इस महीने में जो भी कार्य किया जाता है उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है मल्टीफोल्ड होता है और हम देखेंगे कि अभी हम ना जो ये दीप प्रज्वलित करेंगे भगवान दामोदर के लिए तो ये दीप जो प्रज्वलित करते हैं उससे होता यह है कि हमारा जो हृदय होता है वो भी प्रज्वलित हो जाता है, ज्ञान से भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। तो इसमें बहुत शक्ति है। तो थोड़ा सा हम पहले कार्तिक महीने के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, फिर भगवान की लीला के बारे में संक्षेप में बताएंगे, और अगर और हमारे पास वक्त रहा तो आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो हम सिर्फ सीधा दामोदर दृष्टिकोण करेंगे। तो बताते हैं कि जैसे हमारे 12 महीने हैं, ये 12 महीने हिंदू वैदिक कैलेंडर के हिसाब से इसके अलग अलग नाम है और अलग अलग अधिष्ठाता देव है इसके। तो ये जो महीना है इसको कार्तिक मास कहते हैं और इसके अधिष्ठाता देव दामोदर है, तो श्री दामोदर की वजह से इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और ये जो महीना है ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और राधा रानी को बहुत प्रिय है। और इस महीने के अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जैसे इसी महीने में भगवान रामचंद्र ने वापस अयोध्या में प्रवेश किया था रावण को मारने के बाद, तो पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, इसीलिए दीपावली नाम पड़ा। तो दीपावली आता है इस महीने में। फिर ये भगवान की जो दामोदर लीला जिसका फोटो हम यहाँ पर देख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये दामोदर लीला इसी महीने में हुई थी दिवाली के दिन। फिर भगवान कृष्ण ने भवासुर और या फिर नरकासुर जिसको कहते हैं उसका वध किया था। इसी महीने में लोग लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, तो लक्ष्मी पूजा या चौपड़ा पूजन या बॉम्बे में जो भी बोलते हो किया जाता है। लेकिन कभी कभी भक्तों को सिर्फ दुख इतना लगता है कि लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं नारायण के बिना, कि नारायण के साथ में पूजा नहीं करते। तो लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, तो लक्ष्मी बहुत चंचल होती है, वो एक जगह पर ठहरती नहीं है। और लक्ष्मी के ठहरने का स्थान केवल एक जगह पे है, वो कहाँ पर है? नारायण के चरणों में। तो वो नारायण के चरण में बैठती है उनके पैरों में और उनके पैर दबाती है, तो लक्ष्मी का वो है। सो नारायण की भी पूजा करनी चाहिए साथ में। और इसी दिन गोवर्धन पूजा भी हुई थी, भगवान ने जो गोवर्धन धारण किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो चरित्र है वो समझ में नहीं आता कई लोगों के, कह रहे उन्होंने ऐसा सब क्यों किया, गोपियों के साथ उन्होंने डांस किया और ये किया वो किया सब करके। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था छोटी उंगली में। तो कोई अगर इस तरह का कार्य करने की बात करता है, अपने आप को भगवान घोषित करता है, तो उसको अपने हाथ पे पहले गोवर्धन भी उठाना चाहिए, फिर वो बात कर सकता है। और गोपाष्टमी भी एक उत्सव है जो इस महीने में आता है। जब भगवान कृष्ण छोटे से थे तो गाय के बछड़ों को चराते थे, तो बाद में बछड़ों से जब उनको गाय चराने के लिए जब दिया तो उसका एक बहुत बड़ा उत्सव था। ऐसा बताते हैं कि वृंदावन में हर चीज़ एक्चुअली उत्सव के रूप में होती थी, इसीलिए उसको भगवान का जो स्वरूप है और भगवान के जो उनके जो पार्षद है ये सब आनंद में रहते हैं। एक्चुअली बहुत ही आनंद का उत्सव होता है वो। और इसीलिए इस महीने के अंदर जो कुछ भी थोड़ी बहुत भक्ति अगर हम कर सके या करने का प्रयास करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है, मतलब समुद्र के जैसा है। कि जैसे एक छोटा सा कार्य करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिलेगा। जैसे बोलते कि अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोले तो लेस इन्वेस्टमेंट और स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न, बहुत सारा इसमें इसका इस तरह से महिमा बताया गया। और ये कार्तिक का जो महीना है ये लाइक ए शॉपिंग फेस्टिवल और सेल है। तो सेल में क्या होता है कि जो मूल्यवान चीज़ होती है, जो कॉस्टली चीज़ होती है वो थोड़ी सस्ते में बेची जाती है। तो इस तरह से जो भी मतलब एक्टिविटी हम करते हैं वो इसमें हो जाती है। तो इस महीने को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसीलिए हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, हमने सोचा कि लोगों के घर में जाके ये दीप प्रज्वलित करें तो लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। तो इसमें दोनों का बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है और आपका भी बेनिफिट है दोनों का। तो बताते हैं कि ये जो हम कार्य जो भी कुछ करते हैं तो उसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई ऐसे कार्य करे जो आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे नहीं है तो उसका नुकसान भी बड़ा भारी है। ऐसा बोलते हैं कि द मोर इज गिवन मोर इज एक्सपेक्टेड, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जैसे एक वर्कर अगर छुट्टी ले लेगा तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कोई जनरल मैनेजर छुट्टी लेता है तो फर्क पड़ता है कंपनी के अंदर। तो उसकी पूरी सैलरी पूरा जो छुट्टी होता है वो लीव रोस्टर के हिसाब से प्लान करना पड़ता है, ऐसा सब होता है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में और हमेशा ही एक्चुअली जितना ज़्यादा हम भक्ति कर सके या करने का प्रयास करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और बताते हैं कि जैसे जो अलग अलग युग है, सत्ययुग के जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि सत्ययुग की बहुत महिमा ये बताई गई है। उसी तरह जो शास्त्र में वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, हम थोड़ा वेदों के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। और पवित्र करने वालों में सबसे जो अहम है, जो महत्व है, वो है गंगा जी का। गंगा जी इसलिए गंगा का पानी आज भी बहुत पवित्र है, तो वो सारे मतलब लोगों के पाप धुल जाते हैं जब वो गंगा में जाते हैं। और जो पौधा है ना प्लांट, उसमें तुलसी जैसा कोई प्लांट नहीं, क्योंकि भगवान को हम 56,000 करोड़ अगर भोग भी ऑफर करते हैं लेकिन अगर तुलसी साथ में नहीं है तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है और भगवान को बहुत प्रिय है। उसी तरह जो महीना है उस महीने में कार्तिक महीना जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत कार्तिक का इम्पोर्टेंस दिया गया है। और इस कार्तिक के अंदर पद्म पुराण में कथा आती है और हरिभक्ति विलास एक शास्त्र है उसमें लिखा गया है कि कोई भी अगर भगवान को ये घी का एक दीपक अगर ऑफर करता है तो उससे अच्छा कोई बेस्ट गिफ्ट नहीं है भगवान के लिए। भगवान के लिए अगर हम कुछ देना चाहें, एक्चुअली सब कुछ उन्हीं से आता है, और अगर हम थोड़ा सा जैसे एग्जांपल देते हैं कि गंगा में अगर हम जाके थोड़ा सा गंगा पानी लेके वापस गंगा को दे देते हैं तो हमने कुछ दिया नहीं है एक्चुअली। तो वैसे सब कुछ भगवान से आ रहा है, भगवान ही सभी के स्रोत है। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं और कई शास्त्रों में इसका बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन आता है। भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति इच्छति। और वह कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव। कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं जो हूँ वो सभी का मालिक हूँ, सभी चीज मुझसे ही आती है और सभी मुझसे ही उत्पत्ति होती है। तो हम भगवान को एक्चुअली क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते। पर बताते हैं कि अगर एक घी का लैंप भी अगर भगवान को ऑफर करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने ये रिकमेंड किया कि ना कोई भी भगवान को अगर एक घी लैंप ऑफर करता है तो इस लैंप ऑफर करने से ही उसके जो करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं वो घी लैंप के साथ भस्म हो जाते हैं, वो दिए के साथ वो भी हमारे सब चले जाते हैं। और हमारे हृदय में जिस तरह दिया प्रज्वलित होता है उसी तरह हमारे हृदय के अंदर भक्ति भी प्रज्वलित होती है। तो ये इसका महत्व बताया गया है और इसके लिए काफ़ी पुराणों में और शास्त्रों में चर्चा भी आती है। इतना सब हम एग्जांपल, लेकिन एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे एक बार क्या होता है कि पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक मंदिर के अंदर भगवान के सामने एक घी का दीपक जलता होता है और उस दीपक की जब लौ खत्म होने के लिए आती है, बुझने के लिए आती है, तो एक चूहा रहता है वो वहाँ पर घूमता रहता है और वो चूहा जाके उस लौ को खाना चाहता है, उस जो बत्ती जो बुझ गई है उसको। और जैसे वो खाने के लिए जाता है चूहे के मुंह पे बाल होते हैं तो वो बाल एक्चुअली एक उससे लग जाता है और वो बाल जलने लगता है। और जैसे ही बाल जलता है उसको होठ पे लगता है तो उसके मुंह से फूंक निकलती है, और जैसे ही फूंक निकलती है वैसे वापस दिया जल जाता है। तो दिया जलता है और क्योंकि उसने अपने बत्ती को अपने मुँह में ऑलरेडी ले लिया है तो उसके मुँह में चली जाती है और उसके शरीर पर जितने भी बाल होते हैं उन बालों के ऊपर वो सब बाल जलने लगते हैं, तो चूहा तड़पता है और नाचता है और मर जाता है। तो जब वो मरता है तो तुरंत ही चतुर्भुज विष्णु के रूप में वो आता है और वैकुंठ में चला जाता है। तो बताते हैं कि अनजाने में न जाने हुए भी उसने भगवान को एक दीप अर्पण किया और उसके सामने नाच किया, तो नृत्य करने से वो सीधा वैकुंठ में चला गया। मतलब उसका इतना महत्व है। तो बताते हैं कि अगर हम जान करके और भक्ति भाव से अच्छी तरह से अगर भगवान को ऑफर करेंगे तो उसका कितना बेनिफिट होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके बारे में। क्योंकि भगवान जो है उसको भक्त वत्सल कहते हैं, कि भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। और ये जो वत्सल शब्द है ये एक वत्स से आता है, मतलब वत्स मतलब गाय का बछड़ा को वत्स बोलते हैं। तो वत्स से वत्सल बना, कि जिस तरह बछड़ा गाय को बहुत प्रिय होता है उसी तरह भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं। और हमने देखा कि महाभारत में कई बार भगवान ने अर्जुन को किस किस अवस्था में बचाया है, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। कि जब जयद्रथ को मारने का जब अर्जुन ने प्रण लिया था तो कहा कि कल सूर्यास्त के पहले अगर मैं नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, तो भगवान उसको बोले किससे पूछ के किया यार तूने, यू नो। और ऐसी कथा आती है कि भगवान महाभारत में कि दिन में वो लोग लड़ाई करते थे रात में जाके सो जाते थे, और ना रात में मित्रता होती थी उनके बीच में, एक दूसरे के कैंप में आप जा सकते थे और ऐसा सब होता था। तो दिन में लड़ाई करते थे तो बाद में रात को वो देखे कि कृष्ण को चिंता हो गई कि यार अभी इसको जयद्रथ को कैसे मारेगा अर्जुन, और उसको तो ऐसा वरदान मिला कि जो उसको मारेगा और जो उसका शरीर सर धरती पे गिराएगा वो खुद ही मर जाएगा, उसके शरीर सर के सर फट जाएगा। तो बड़ी चिंता हो के भगवान देखने गए कि क्या हो रहा है। तो युधिष्ठिर के शिविर में गए तो देखा युधिष्ठिर महाराज को नींद नहीं है, चैन नहीं है, वो सोच रहे हैं कि क्या होगा अर्जुन का कल। भगवान फिर कृष्ण जाते हैं भीम के कैंप में, और भीम इतना महागदा युद्ध में निपुण पर वो भी एकदम चिंता के अंदर है कि अरे क्या होगा ना भगवान, कल क्या होगा, कल अर्जुन नहीं रहेगा क्या, ऐसी चिंता। नकुल सहदेव सबके कैंप में उधर जाते हैं कैंप में देखने के लिए, तो सबसे पहले द्रोणाचार्य के कैंप में जाते हैं। तो द्रोणाचार्य को चिंता थी कि अरे मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन क्या होगा उसका कल, कल तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनको चिंता नहीं, वो भी जाग रहे हैं। दुर्योधन के कैंप में जाते, दुर्योधन भी जाग रहा है, क्यों? ये सोच के कल खुशी का दिन है, अरे अर्जुन मर जाएगा हम लोग जीत जाएंगे, तो वो भी जाग रहा है, तो दुर्योधन को भी खुशी है, सब जन जाग रहे हैं। वापस भगवान कृष्ण वापस आते हैं और अर्जुन के कक्ष में जाते हैं, तो देखते हैं तो अर्जुन आराम से सोया रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है, बोलता है ये क्या कर रहा है यार, तेरे को मालूम है कल क्या होने वाला है? तो क्या है, मेरे को मालूम है। तो बोला तेरे को कोई चिंता नहीं है? बोला चिंता करने के लिए आप हो ना, मेरे को क्या चिंता है, चिंता करने का डिपार्टमेंट मैंने आपको दे के रखा है। तो बताते कि भगवान का जो, फिर भगवान को एक्चुअली उस पर एक हमने बहुत बड़ा एक ड्रामा भी किया था, दैट व्हेन लॉर्ड कम्स इन एंग्जायटी, इतना मतलब भगवान को चिंता हुई और वो पूरी रात सोए नहीं, सोच रहे थे कि मैं अर्जुन को कैसे बचाऊं, और ऐसी अवस्था में भगवान ने अर्जुन को बचाया। वैसे कई उदाहरण है, कई बार जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो उसको बचाया था, जब उनको विष दिया गया था तब उनको बचाया था, कई बार बचाया था। भगवान भक्त वत्सल है तो वो हमेशा बचाते हैं, और कोई भी कार्य अगर भगवान को करना रहता है वो अपने भक्तों के थ्रू करते हैं। जैसे शंकराचार्य ने बहुत अच्छा श्लोक लिखा है गीता की महिमा के बारे में, बताते हैं कि जो भगवद गीता है ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है कि जैसे उन्होंने कहा है कि सर्वो उपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता वृतम महत्व। वो कहते हैं कि हमारे जो भी वेद पुराण शास्त्र जो भी है वो एक गाय के समान है, और गाय का जो एसेंस होता है वो क्या होता है, मिल्क, दूध होता है उसका एसेंस। तो सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदन, और गाय को दुहने के लिए एक दूध वाला चाहिए, एक मिल्क मैन चाहिए, तो वो मिल्क मैन कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो बताते कि हमारे पूरे शास्त्र गाय के समान है, जो मिल्क मैन है वो कृष्ण है, और जब गाय का दूध निकालना रहता है तो गाय ऐसे ही दूध नहीं देती है, पहले बछड़े को छोड़ना पड़ता है, तो गाय रिलीज करती है दूध और उसके बाद आप ले सकते हैं। तो बताते हैं पार्थो वत्स, पार्थ मतलब अर्जुन और वत्स मतलब बछड़े के रूप में अर्जुन को प्रयुक्त किया है और उसको भेज रहे हैं, और अर्जुन के द्वारा भगवान हमको भगवद्गीता बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उन शास्त्र वेदों से जो भी निचोड़ उसका निकल रहा है, जो भी अमृत निकल रहा है, वो सब भक्तों में बांट रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं ना भक्तों को, भगवान खुद भी कई कार्य कर सकते थे लेकिन अर्जुन को ग्लोरी देना चाहते थे तो भगवान ने उनसे करवाया। तो इसके लिए भगवान भक्त वत्सल है, और भगवान की जो महिमा है उसका कोई पारावार नहीं है, और भगवान इतनी यहाँ पर आके ऐसी लीला करते हैं। बताते हैं कि जैसे जो पर्यटन विभाग, मतलब क्या बोलते हैं, टूरिज्म जो डिपार्टमेंट, मैं हिंदी मोड में आ गया अभी, तो पर्यटन विभाग के जो अधिकारी होते हैं कई बार वो बड़े सुंदर सुंदर चित्र छापते हैं, बहुत अच्छे पोस्टर छापते हैं, और वो पोस्टर छाप के जगह जगह पे भेजते हैं कि देखो हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये इतना अच्छा जगह है, महाबलेश्वर में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करके बहुत फोटो भेजते हैं, और बैंगलोर में भेजेंगे, इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे, प्रिंट करेंगे ताकि लोग वहां पर आकर्षित होकर आवे, या विदेशों में भेजेंगे कि देखो हमारे भारत के अंदर इतने अच्छे पर्यटन स्थल है, इतने अच्छे सारे चीज है, तो आओ वहां पे देखो। तो उसको देख के हम आकर्षित होते हैं और वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। तो भक्त जो होता है वो भी एडवर्टीजमेंट करता है भगवान का, वो जाके भगवान के बारे में बताता है, लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं जो भक्तों की बात नहीं सुनते हैं, तो भगवान खुद आते हैं बताने के लिए कि देखो मैं आया हूँ। तो ये जो दामोदर लीला है ये हमारा गोलोक का एडवर्टीजमेंट है, तो ये जो लीला है भगवान बताने के लिए आते हैं कि देखो कितना आनंद है ये जो लीला मैं कर रहा हूँ। तो लीला की शुरुआत इस तरह से होती है कि भगवान जो होते हैं वो माखन के बहुत शौकीन होते हैं, तो बहुत गोरस, गोरस मतलब होता है कि कोई भी चीज जो गाय से बनती है उसको गोरस बोलते हैं, उसके बड़े शौकीन है भगवान, तो हमेशा माखन के लिए भटकते रहते हैं, खाते रहते हैं और सबके घर में चुराते रहते हैं और अपनी लीला करते रहते हैं। तो सभी गोपियां आकर के भगवान को उलाने देती है, और यशोदा माता को कि क्या तुम्हारा बेटा देखो हमारा माखन खा लेता है, ऐसा वैसा ये सब करके। तो एक बार यशोदा माता पूछती है कि अरे लाला क्या हमारे घर में माखन की कमी है क्या, कि तू दूसरों का जाके माखन खाता है, तो माखन है ना हमारे घर में इतना अच्छा था। तो भगवान उनको बोल देते हैं कि मैया मैं घर में बैठ के नहीं खाना चाहता, कुछ कमा के खाना चाहता हूँ। तो मैया कन्फ्यूज होते, बोले अरे ये क्या बोल रहा है। तो वो सोचती है कि हालांकि नंद बाबा जो है, जो नंद महाराज ना, वो ये अपने गोकुल के राजा है, तो बड़ा मतलब ऑपुलेंस था उस जमाने में। तो अभी तो हमारे पास क्या है, हम लोग प्लास्टिक और इमिटेशन ज्वेलरी की चीज पहनते, तभी तो उनके पास क्या क्या नहीं था। तो उस समय में अभी जैसे हमारे पास एक कार है, दो कार है, चार कार है, तो ऐसा मानता है आदमी बहुत बड़ा आदमी है, पर तभी जिसके पास बहुत गाय होती थी, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, उनको माना जाता था कि भाई वो बहुत ऑपुलेंट है ना, उनका बहुत ऐश्वर्य है। तो नंद बाबा के पास 900,000 गाय थी और इतने सारे नौकर चाकर थे उनको संभालने के लिए। तो यशोदा माता ने सोचा कि अरे ये जो मेरे नौकर चाकर है ये उत्कृष्ट क्वालिटी का माखन नहीं बना रहे, इसलिए मेरा लाला इधर उधर भटक रहा है माखन खाने के लिए, तो मैं इसके लिए अच्छा क्वालिटी का माखन बनाती हूँ। तो क्या होता था कि 9 लाख जो गाय थी उनका दूध 1 लाख गायों को पिलाया जाता था, 1 लाख गायों का दूध, और वो 9 लाख गायों को ना बड़ी अच्छी घास खिलाई जाती थी, सुगंधित घास, और उससे जो 1 लाख गाय का दूध निकलता था वो 10,000 गायों को पिलाते थे, और इस तरह करके 1,000 गाय और 100 गाय तक को जो दूध आता था, और वो दूध जो निकलता था उसमें कुछ स्पेशल गाय थी जिनको पद्मगंधा गाय बोलते थे, और उस पद्मगंधा गाय का जो दूध निकलता था वो भगवान कृष्ण के लिए यूज होता था, क्योंकि भगवान तो प्रिंस है ना, राजा के लड़के हैं, तो उनके लिए जो यशोदा थी, तो मतलब एक और जैसे आचार्य लोग बताते हैं कि यशोदा माता की जो धारणा है, जो उनका स्वभाव है, वो ये है कि मेरे लाला के लिए मैं एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का चीज करूंगी। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमको भगवान के लिए कुछ भी करना है तो एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का करना है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि मेरे लिए नंबर वन, लेकिन भगवान के लिए ठीक है जो भी बचा रहेगा वो दे दो करके ना। तो कई बार ऐसा है, जब चैरिटी की भी बात आती है दान की, तो लोग सोचते हैं कि अरे जो घर में सबसे बासी रोटी वो निकाल के दे देते हैं, और जो फटा हुआ कपड़ा है वो दे देते हैं। तो इस तरह के मतलब धारणा हमारे सबके अंदर है, क्योंकि इस तरह से हमको कोई हो सकता है बताया भी ना हो। तो माता बनाती है, और वो दूध जिससे मिठाई बनाने वाली है वो दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। तो बताते हैं कि जो वृंदावन में सारी की सारी चीजें चिन्मय है, मतलब जिसमें सब में जान है, और वो दूध सोचता है, और तभी क्या होता है कि माँ अपना वो मक्खन निकालने के लिए तैयारी करते रहती है। कृष्ण उठ के आता है, और छोटा से बालक रहते हैं 2-3 साल के, और उनका दूध पीने के लिए आते हैं। तो बोलते हैं मेरे को दूध पीना है, तो मैया उसको दूध पिलाती है, लेकिन देखती है कि वो जो दूध रखा है वो ना उबल रहा है। तो दूध ये सोचता है कि अरे अगर कृष्णा मैया का दूध पी लेगा तो मेरा जीवन तो समाप्त हो गया ना, कुछ नहीं, मतलब मैं तो क्या करूंगा, तो इससे अच्छा मेरे को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो दूध का आत्महत्या कैसे करता है स्टाइल, वो उसमें से बाहर निकलता है। तो जैसे ही बाहर निकलने जाता है, उस आवाज को सुन के माँ कृष्ण को छोड़ के भागती है दूध बचाने के लिए। तो कृष्ण सोचता है अरे मेरे को छोड़ दिया इस दूध को बचाने के लिए, जीवन में मेरे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं पाठ पढ़ाऊंगा। तो वो एक पत्थर लेते हैं, उठा के वो मटका फोड़ देते हैं जिसमें से वो मक्खन बनाने वाले रहती है, और वहां से सब मक्खन वक्खन लेके इधर उधर फेंक देते हैं और लेके चले जाते हैं, बंदरों को मक्खन खिलाने के लिए लगते हैं। तो होता था कि यशोदा भी उसको दूध को इसलिए बचाने गई क्योंकि वो कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो रहा था, लेकिन फिर भी कृष्ण को गुस्सा आया और जाके वो बंदरों को मक्खन खिला रहे और सब कर रहे हैं। तो और इस तरह की भी मतलब एक आचार्य बताता कि ये जो बंदर लोग है ये ऑर्डिनरी बंदर नहीं है जिसको भगवान मक्खन खिला रहे हैं, ये बंदरों ने भगवान राम को सहायता की थी जब रावण को युद्ध किया था, तो उन्होंने ब्रिज बनाया था और ये सब। तो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उनकी उन्होंने सहायता की थी, और भगवान राम जो थे इस लीला के अंदर आए थे और वो जंगलों में भटक रहे थे। तो बताते हैं कि भगवान जो रामचंद्र जी है वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, और इतने भक्तवत्सल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा इस दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं एक्चुअली। और इसीलिए उद्धव जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, किम चित्रम अच्युत ततैव शेष बंधो दासेषु अनन्य शरणेषु यदात्म सत्वम यो रोचयत सह मृगे स्वयं ईश्वराणाम श्रीमद् किरीट पीठ पीड़ित पाद पीठ। बताते कि भगवान जो रामचंद्र जी है, किम चित्र अच्युतम, बोलते कि अच्युत वो जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे भगवान रामचंद्र प्रभु जिनकी इतनी शक्ति और इतना उनमें सामर्थ्य था कि जो बड़े बड़ी महान विभूतियां थी ब्रह्मा जी के जैसे, और वो अपने मस्तक पे जो वो मुकुट रखा रहता था वो उठा के वो उनके जो सिर पे था वो भगवान रामचंद्र के पैरों में रखते थे, कि इतना मतलब उनका आदर, इतना सत्कार और इतनी शक्ति थी, और सारे के सारे देवतागण उनके पास आके झुकते थे क्योंकि भगवान विष्णु है भगवान राम। तो बताते कि वही स्वयं राम जब वो जंगल में घूम रहे थे तो इतने दयालु है, बताते किम चित्र अच्युतम तदेव अशेष, बोलते कि उनके जितनी दया किसकी है, क्यों वो क्या कर रहे हैं कि वो बंदरों के साथ घूम रहे हैं, और उसके लिए क्या एक उपाय है कि खाली बस दासेशु अरण्य शरणेशु, कि जो उनके शरण में चला जाता है भगवान पूरा उसका चार्ज ले लेते हैं। तो अब सोचना चाहिए कि ऐसा भगवान जिसके पास इतनी सब शक्ति है वो बंदरों के साथ घूम रहा है ना, ये कैसी लीला कर रहे हैं। बताते हैं कि जैसे अगर कोई एकदम अतीव धनवान व्यक्ति, अतीव शक्तिशाली व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इस संसार के अंदर ऐसा करेगा क्या, जैसे सोचो कोई शेख कल एमिरेट्स पैलेस होटल में जा रहा है और जाएगा साथ में बंदर को लेके जाएगा क्या मीटिंग के अंदर, सब लोग टाई कोट पहन के बैठे हैं कॉन्फ्रेंस टेबल के ऊपर, वो साथ में बंदर भी जा रहा है, कोई पूछेगा कौन है भाई, बोला मेरा एसोसिएट है, क्या करेगा कंसल्टेंसी देगा मेरे को, बोला ऐसा। तो वो कंसल्टेंसी ले रहे भगवान रामचंद्र उन बंदरों से कि अच्छा अभी रावण को किधर ढूंढना चाहिए, सीता को कहाँ ढूंढना चाहिए, रावण को कैसे मारना चाहिए, बताओ ऐसा करके। तो बताते कि इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो जब भगवान के साथ ये बंदर घूम रहे थे तो भगवान बोले कि इस लीला में यू नो कुछ धन का अभाव है मेरे पास, यू नो व्यवस्था बरोबर से नहीं है, अगले युग में आ जाना बहुत खिलाऊ पिलाऊंगा, अभी कुछ खिला नहीं सकता, खाली कंदमूल खा के चुप रहो करके। तो ये सोच के भगवान कृष्ण उन बंदरों को कई बार माखन खिला देते थे, और जब गोपी उलाना देती थी तो कृष्णा उनको बोल देते थे कि अरे, क्योंकि इतना मक्खन खिलाते थे उनको कि मक्खन खाने के बाद बंदर मक्खन भी थूक देते थे, बोलते अभी नहीं चाहिए बहुत हो गया पेट भर गया। तो गोपी को बोलते अरे तुम क्या उलाना दे रहे हो, तुम्हारा मक्खन इतना थर्ड क्लास है कि बंदर भी फेंक देते हैं, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है खाने के अंदर। तो वो खिला रहे हैं तो पीछे से मैया उसको ढूंढते ढूंढते है कि अरे किधर गया मेरा लाला, और हाथ में लकड़ी ली के इसी ने ये फोड़ा हुआ है, और जाके उसको पकड़ने के लिए भागी। तो बताते कि भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया उसके पीछे पीछे भाग रही है, और भागते 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 अल्टीमेटली वो मैया भगवान को पकड़ लेती है और बोलती है आज मैं तुझे दंड दूंगी, क्योंकि तूने इतना यू नो उथल पुथल मचाया है और इतना तेरी कंप्लेंट आती है, और तूने जो छींके में से मक्खन उतारा है वो उखल पर खड़े रहकर उतारा, तो उसे उससे बांध दूंगी। तो जाके एक रस्सी लेके आती है और कृष्णा को बांधने जाती है, लेकिन जैसे रस्सी बांधने जाती है वो रस्सी दो उंगल छोटी पड़ जाती है, तो वो कन्फ्यूज होती है क्या हुआ, दूसरी रस्सी उठाती है फिर उससे बांधती है, ऐसा करते करते सारी रस्सी यूज करती है, 9 लाख रस्सियां लेके आती है, लेकिन वो हो ही नहीं। और सभी गोपी लोग देख के हंसती है कह रहे हैं क्या हो रहा है, और यशोदा भी हंसती है कि क्या हो रहा है, वो लोग विस्मित हो जाते हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पर बताते हैं कि जो दो उंगल छोटी पड़ जाती है उसके पीछे आचार्य लोगों ने कमेंट्री दी है, ये दो उंगल है, एक उंगल हमारा प्रयास भक्त का प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा, कि जब तक हम ऐसा बताते हैं इंग्लिश में कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ्स, अगर हम ही लोग अगर भगवान की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो भगवान कहाँ से हमारी तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमको भी प्रयास करना चाहिए भगवान की तरफ जाने का, कि अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान खुद ब खुद हमारे पास आएंगे। तो ये तो अल्टीमेटली फिर बाद में भगवान सोचते हैं कि अभी भैया ने बहुत श्रम कर लिया, चलो मैं बंध जाता हूँ, तो बांध देती है और बांध के अपना काम करने जाती है, तो भगवान अपना और लीला जारी रखते हैं। तो उनके नंद बाबा के कोर्ट में दो बड़े बड़े यमन अर्जुन के झाड़ होते हैं, तो उस झाड़ के बीच में से वो निकलते तो उखल फंस जाता है और ऐसा धक्का मारता है कि दोनों झाड़ टूट जाते हैं। तो बताते हैं कि ये जो दो बड़े बड़े पेड़ इतने विशाल का पेड़ थे कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जैसे शाल के जो वृक्ष होते हैं ना बड़े कठोर होते हैं, तो उसको तोड़ देते हैं भगवान और फटाक से वो गिरते हैं। पर इसके पीछे भी कथा है कि ये दो दो झाड़ होते हैं, ये कुबेर जो ट्रेजरर है देवता लोक के, उनके दो लड़के लोग रहते हैं नल कुबेर और मणिग्रही, तो इनके पास इतने पैसे होते हैं, और जब कई बार बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो कई बार बुद्धि फिर जाती है, तो वो पैसे लेके बहुत गलत काम करने के लिए जाते हैं वो लोग, तो वो कई अप्सराओं के साथ वो लोग नग्न स्नान वगैरह करते रहते हैं, तो नारद मुनि वहां से गुजरते हैं। तो बताते हैं कि ये कल्चर है कि कोई भी अगर साधु आता है तो हमको साधु को देख के उसको प्रणाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्यों, क्योंकि साधु जो है वो भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है और इसीलिए उसको प्रणाम करना चाहिए। पर वो इतना नशे में रहते हैं उनको समझ में नहीं आता है, तो नारद मुनि उनको श्राप दे देते हैं, तो फिर उनका होश आता है कि अरे हमको सांप श्राप बताते कि तुमको नंगा रहना पसंद है तो जाओ झाड़ बन जाओ। तो फिर बाद में जब माफी मांगते तो बोलते हैं कि मैं तुमको झाड़ तो बनाया हूँ, लेकिन तुम झाड़ बनोगे किधर, नंद बाबा के कोर्टयार्ड में जाके। तो बताता कि नंद बाबा का जो कोर्टयार्ड है वो इतना महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही महान आचार्य हुए रघुपति उपाध्याय, वो कहते हैं कि श्रुतिम अप्रे सुप्रिम अप्रे भारत मन्ये भजन्तु भयभूतम यस्या लिंगे परब्रह्म यस्या लिंगे परब्रह्म। वो बोलते हैं कि लोग ना भगवद्गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, पुराण इत्यादि पढ़ते हैं भय के कारण, डर के कारण, कह रहे मैं मर जाऊंगा कल, मेरा क्या होगा। बताते हैं कि पर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ नंद बाबा का वो जो कोर्टयार्ड है उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यस्या लिंदे परब्रह्म यस्या लिंदे परब्रह्म, के उस कोर्टयार्ड के अंदर जो परब्रह्म भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो छोटे से बालक नन्हे से शिशु के रूप में उधर लौट रहे हैं, तो इसके लिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ। तो बताते हैं कि तुम वहां पे बनोगे और साक्षात भगवान का तुम्हें दर्शन होगा और तुम वापस आ पाओगे। तो इस तरह से वो यमन अर्जुन के झाड़ को गिरा देते हैं, फिर सब दौड़ के आते कह रहे क्या हुआ इतना जोर से आवाज हुआ। तो मैया जैसे ही कृष्ण को उठाने जाती है तो कृष्ण जाते नहीं है और वो नंद बाबा की गोद में चले जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं मैया के पास नहीं जाएगा क्या, तो कह नहीं नहीं जाऊंगा मैं मैया के पास, उसने मेरे को आज सजा दी। तो बोलते अच्छा बेटा तेरे को खिलाएगा कौन, तो बोला तू बाबा। तेरे को पिलाएगा कौन, तू बाबा। तेरे को नहलाएगा कौन, तू बाबा। बोला अरे सब कुछ मैं ही करूंगा क्या। तो फिर बाद में नंद बाबा बोलते अच्छा अभी मान भी जा बेटा, जा मैया के पास जा। तो ये जो है ये लीला है जो भगवान बताते हैं कि मेरे को छोड़कर इस दुनिया के अंदर और कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तो इसीलिए अगर आप तुम मेरे को छोड़ के अगर किसी दूत को भी बचाने जाओगे, हालांकि मेरे लिए, लेकिन मैं जीवन में सर्वोपरि हूँ, ये एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये जो लीला है ये दामोदर अष्टकम के अंदर सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण के अंदर बहुत अच्छी तरह इसको लिखा है और इसका वर्णन आता है। और इसके अंदर ये भगवान का जो छोटा सा बाल स्वरूप है उसके बारे में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। पर ये पढ़ने के पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे शायद आप लोग को पता रहेगा कि हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको शॉर्टकट में इस्कॉन बोलते हैं, मतलब उससे जुड़े हुए हैं। और ये इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद ने की थी 1966 में। तो प्रभुपाद जी जो थे वो भारतीय थे, उन्होंने कलकत्ता में जन्म लिया था और स्कॉटिश कॉलेज के अंदर पढ़ते थे वो, बड़ा उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। लेकिन गांधी जी से और सुभाष चंद्र बोस से बहुत आकर्षित थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उनके एक क्लास सुपीरियर थे। तो उन्होंने अपनी जो डिग्री थी वो भी फेंक दी, बोला नहीं चाहिए मेरे को, स्वदेशी आंदोलन के अंदर थे और काफ़ी ऐसे उनका चल रहा था। तो एक बार वो किसी के प्रवचन में चले गए, जैसे है ना आपको भी किसी ने बुलाया करते हैं। तो वहाँ पर जब गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर करके एक थे, उन्होंने जो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने प्रभुपाद को देखा और कहा कि अरे आप तो जवान व्यक्ति हो, यू आर यंग बॉय, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द वेस्टर्न कंट्री, कि आप पाश्चात्य जगत में इसका प्रचार क्यों नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोले, उनका नाम अभय चरण था उस टाइम, तो बोले अभय चरण बोले कि अरे तुम्हारे इस मैसेज को कौन सुनेगा, आज तो भारत गुलाम है, पहले हमको आज़ादी चाहिए, जब अगर हमको आज़ादी मिलेगी तो ही हम उसको सुन पाएंगे, नहीं मतलब तो ही हमारा बात कोई सुनेगा, नहीं तो कौन सुनेगा, गुलाम लोग की बात कौन सुनता है। तो भक्ति सिद्धांत उनको बोले कि जिस आज़ादी की तुम बात कर रहे हो वो शारीरिक लेवल पे है अभी, क्योंकि तुम यू नो भारत में हो और गुलाम हो, इसलिए अपने आप को भारतीय कह रहे हो। अगर कल अमेरिका में जन्म हुए होते तो अपने आप को अमेरिकी कहते होते। और भगवद गीता का जो पहला मैसेज है वो यही है कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल, कि हम ये जो शरीर नहीं है हम आत्मा है। और उसके कई मतलब उदाहरण, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा हाथ, मैं कभी ये नहीं कहता मैं हाथ, मतलब हाथ और मैं दोनों अलग अलग है। तो उसी तरह कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि जैसे कार और ड्राइवर, यू नो हमारा सोल ड्राइवर के जैसे है और हमारा बॉडी कार के जैसे है। तो इसी तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ उनको समझाया, तब उनको समझा क्या रहे ये जो बोल रहे बहुत सही बोल रहे हैं। और फिर उनको अपने मन में विश्वास था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उनकी फैमिली थी वो कुछ कर नहीं पाए। और जब वृद्धावस्था में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरे गुरु ने मेरे को आदेश दिया था जिसका पालन मैंने आज तक किया नहीं है। तो वो 69 बरस के थे तब उन्होंने विचार किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवद गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है। तो उनके पास पैसे वैसे तो थे नहीं, रिटायर्ड लाइफ में थे, तो सुमति मोरारजी के पास हो गए जो सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालकिन थी, और उनको जाके बोले कि तुम्हारा ये रोज जो जहाज जाता है अमेरिका में, मेरे को उस पर एक टिकट दे दो, मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका। तो सुमति मोरारजी का मैंने इंटरव्यू देखा है, उसमें वो कहती है कि अरे बुढ़ा तू मर जाएगा, तो क्यों उधर जाना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो देर इज टू मच कोल्ड एंड यू आर वेरी ओल्ड, यू विल डाई, डोंट गो देयर। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को जाना है। तो प्रभुपाद जी निकले और 32 दिन का सफर करके समुन्द्र में वो पहुंचे वहां पे बोस्टन में, और ये बताने के लिए कि भगवान का नाम जप करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना है और चार नियमों का पालन करना इत्यादि। तो पर जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा जो संस्कृति है अमेरिकन लोगों का वो पूरा भ्रष्ट है, उनको भी क्या बताएंगे। तो उन्होंने एक प्रेयर लिखा जो इस एक सीढ़ी हम आपको इसके बाद देंगे, इस सीढ़ी के अंदर भी है एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम मेरे को इधर लेके आ गए, अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊँ ये सब बारे में, इनको तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़े जादूगर हो, अगर आपने मेरे को यहाँ पर लाया है सुनो, तो आप ही मेरी वाणी को ऐसा बनाओ कि मैं उन लोगों को समझा सकूँ और वो लोग भक्ति को एक्सेप्ट कर सकें। और इस तरह बड़े मेहनत करके फिर 1966 में उन्होंने यू नो इस्कॉन की स्थापना की। और जब तक वो थे 12 वर्ष थे, उसके बाद 65 में पहुंचे थे, 77 तक थे, उसमें से 14 बार इस पूरा देश का पूरा दुनिया का भ्रमण किया और 110 मंदिर उन्होंने बनाए। आज इस्कॉन के 500 मंदिर है पूरी दुनिया के अंदर, और कई स्कूल प्रोजेक्ट फार्म कम्युनिटी और ये है। और आप देखोगे कि उनसे जो जुड़ने वाले लोग हैं वो भी एकदम मतलब यू नो फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल्स से लगाकर यू नो हर तरह के लोग हैं। तो कई लोग यू नो जुड़े हैं। तो बताते कि जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि भगवान का जो नाम है उसके बारे में लोगों को बताना, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के बारे में लोगों को बनाना, उनको प्रोत्साहित करना कि भगवान की भक्ति सर्वोच्च है। और बताते हैं कि जो ये जो मैनुअल है, जैसे अगर हम एक वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो उसके साथ एक मैनुअल आएगा किस तरह ऑपरेट करना, कंप्यूटर खरीदने के तक मैनुअल आएगा, लेकिन हमारा हमारे शरीर का क्या, हम लोग इधर आए हमारा मैनुअल क्या है, तो वो मैनुअल भगवद गीता है। तो भगवद गीता के बारे में लोगों को बताना। तो बताते हैं कि हम लोग सब लोग ना हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कई बार हमको हैप्पीनेस मिलता नहीं है, खुशी मिलता नहीं है, आनंद मिलता नहीं है। कई बार मिलता है लेकिन वो भी क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए मिलता है और फिर वो गायब हो जाता है। तो बताते हैं कि जो परमानेंट अगर हमको आनंद की अनुभूति करनी है तो हमको भगवान से जुड़ जाना है। तो जैसे ही अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, जैसे योग का मतलब होता है, योग युज धातु से आता है ना, कनेक्ट करना। तो कनेक्ट किससे करना है? अगर हम आत्मा है तो हमको परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो अगर हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे तो क्योंकि परमात्मा चिन्मय है, हम भी चिन्मय है, हम आनंद की अनुभूति करेंगे। लेकिन अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो फिर वही जो त्रिविध ताप हमारे को मिलते रहते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है उसके अंदर हम लोग चलते रहते हैं। तो बताते हैं कि ये जो चीज भी है वो सभी के भाग्य में नहीं रहती है। जैसे एक एक प्राणी है, एक जानवर है ना, वो भगवद गीता नहीं पढ़ सकता, खाली हमें लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे को उतना बुद्धि दिया भगवान ने, पढ़ने की शक्ति दी है। तो उसी प्रकार की जो भगवान के जो संपर्क में आना वो भी ना सभी के भाग्य में नहीं लिखा रहता। हालांकि हम भारत में जन्मे हैं तो हमारा बड़ा सौभाग्य है, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला भी है कि भारत भूमि में जो जिसने जन्म लिया है वो बहुत श्रेष्ठ है। एक्चुअली उनको भगवान के बारे में दूसरों को बताना चाहिए। अब हम भारत भूमि छोड़ के एक्चुअली इधर आके बैठ जाए फिर भी हमारा कनेक्शन है भगवान के साथ। तो बताते कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्योंकि जो भक्ति का जो बीज होता है वो भगवान की कृपा होती है तो ही मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो पूरा ब्रह्मांड में हम लोग चक्कर लगा लेंगे लेकिन फिर भी वो मिलना मुश्किल होता है। तो जो वेद शास्त्र जो है वो वेद जो है वो विद धातु से आता है, मतलब नॉलेज। तो वेद जो है वो ज्ञान है। तो बस ये ज्ञान को हमें थोड़ा सा अपनाना है ना, अगर कोशिश करनी चाहिए अगर भगवद्गीता हम पढ़ सके, क्योंकि भगवद्गीता में इतना सॉलिड तरह का जो ज्ञान दिया है वो कहीं पर नहीं है। मतलब चाहे एक चीज पूरी दुनिया में हर लोग मानते हैं, चाहे वो जर्मनी है या अमेरिका है, रशिया है, इटली है, इंडोनेशिया है, जो भी है, कि भगवद्गीता जैसा पुस्तक इस दुनिया में नहीं है। एक चीज सभी लोग जानते हैं, बाकी जो भले किसने भगवद्गीता पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है फिर भी उसको एक चीज मालूम है कि हाँ भगवद्गीता, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भी प्रश्न है उसका उत्तर भगवद्गीता देती है। और ये इतना समराइज, जैसे मैंने कहा था कि एसेंस है एक्चुअली पूरा। तो अगर हम भगवद्गीता को अपने जीवन में, कई बार हम सोचते कि अरे बहुत सारा श्लोक लिखा है, ये लिखा है, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन श्रीला प्रभुपाद का यही कॉन्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है कि उन्होंने एज इट इज भगवद्गीता जशी आहे तशी, अगर आप देखोगे तो उस पर लिखा है भगवद्गीता यथारूप जशी आहे तशी, उसको प्रेजेंट किया है और इतने सिंपल वर्ड में प्रेजेंट किया है कि आज हमारे जैसे लोग भी उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार कई भक्तों का ये अनुभव रहा है कि वो भगवद्गीता पढ़ने के बाद उनकी बुद्धि और तेज हो गई है। तो उनका जो अगर बिजनेस है तो बिजनेस में, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में, स्कूल है तो स्कूल के अंदर, कॉलेज तो कॉलेज के अंदर उन्होंने अव्वल काम किया है। तो कोई भी मतलब हानि नहीं है इस पथ पे अगर कोई भी चलता है तो उससे बहुत बेनिफिट ही मिलता है, कोई हानि नहीं होती है। तो हमारा जो उद्देश्य खाली यही है कि आज बहुत ही शुभ दिन है कि इस कार्तिक महीने में हम लोग यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए हमको जुड़ना है भगवान के साथ। जैसे भी है, भगवान को अगर हम केंद्र में लाएंगे, सेंटर में लाएंगे, तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे कल क्या होगा, बहुत सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था और ये भी 10 साल पुरानी बात है, अभी तो और बड़ा हो गया, वो है मेंटल स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मतलब स्वाइन फ्लू ये सब तो बहुत, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज सबको स्ट्रेस है। आप छोटे बच्चों को देखो, नर्सरी में जाता है इतना भारी बोझ उठा के जाता है और आता है पटकता है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, होमवर्क इतना दे रहा है, बच्चे लोग परेशान है, माँ बाप उससे ज्यादा परेशान है, कह रहे मेरे बेटे का क्या होगा, कल ओपन हाउस है, कल ये है ना, वो है ना, ये करो ना, वो करो, इतना सारा टेंशन दे दिया है हर चीज के अंदर, टेंशन पे गाना बना दिया लोगों ने, डोंट वरी बी हैप्पी, इतना सारा मतलब इतना टेंशन है लोगों को, इतनी चिंता घेर के रखी है कि जहां जाओ वहां पे चिंता 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 चिंता, और कुछ सुनाई नहीं देता है। तो बताते हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, चिता सिर्फ एक बार जलाती है वो भी मरने के बाद, अगर चिंता क्षण क्षण जलाती है। और चिंता से अगर बचना है तो चिंतन करना चाहिए, किसका, भगवान का। अगर भगवान का चिंतन करेंगे तो चिंता से मुक्त हो सकेंगे, नहीं तो चिंता ऐसा पीछे पीछे भागती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर क्या हो रहा है करके। तो इसीलिए चिंता मुक्त करने के लिए हमको चिंतन करने का, और इस चिंता से अगर हम जब करते हैं तो बताते कि, और ये जो भगवान का धाम है जहाँ पर भगवान लीला करते हैं उसको चिंतामणि धाम बोलते हैं, चिंतामणि के समान है। चिंतामणि मतलब वो स्टोन है जो जहाँ पर जिसको टच कर दिया वो सोना बन जाता है। तो भगवान का धाम जो है वो चिंतामणि धाम है, और ये धाम जो है ये हमारा भौतिक जहाँ पे हम लोग है वो है चिंता फॉर मनी, वो चिंतामणि है, ये चिंता फॉर मनी है। तो यहाँ पर हमको बहुत चिंता रहती है, अरे कैसा पैसा मिलेगा, कैसे करूँ, वैसा करूँ, उसका कोई अंत ही नहीं है। और ये जो आशा है ये इतनी भारी है, जैसे शंकराचार्य बताते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशान विहीना जाति टुंडम वृद्धो यापी ग्रहित्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, टुंडम मुंडम पिंडम कुंडम ऐसा सब करके ना, इसका जो मतलब है वो बड़ा सॉलिड है। वो कहते हैं अंगम गलितम, कि हमारा जो शरीर है वो गलने लगता है जब हम बुढ़े होते हैं। इसके लिए ना कई बार लोग सोचते हैं जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब करूंगा मैं भगवान का, अभी क्यों करूँ ना, अभी नहीं है अभी। तो बताते हैं कि अगर भगवान को सर्वश्रेष्ठ देना है तो समय भी सर्वश्रेष्ठ देना है हमारे को ना हमारा, नहीं तो क्या है बुढ़े होंगे आंखों से दिखाई नहीं देता है ना, भगवदगीता क्या पढ़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं है भगवदगीता पढ़ना, चलने को होगा नहीं, मंदिर किधर से जाएंगे। तो बताते कि अंगम गलितम, ये अंग जो है वो गलने लगता है हमारा धीरे धीरे। अंगम गलितम पलितम मुंडम, पलितम मतलब गिर जाता है, मुंडम मतलब बाल, एक 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 बाल झड़ने लगता है हमारा, सब गिर जाता है। इतना जो उसके ऊपर हम कॉस्मेटिक और शैम्पू वगैरह अप्लाई करते हैं वो सब बाद में कुछ रहता नहीं है। और दशा में भी ना जाती टुंडम, हमारे जो ना प्लेयर है खिलाड़ी है 32 खिलाड़ी जिनको हम रोज चमकाते रहते हैं सुबह सुबह एक दर्पण में देख के, वो एक एक करके विकेट आउट होते जाता है, वो सब गिरते जाते हैं। दशान विहीन जाति टुंडम वृद्धो यापि गृहीत्वा डंडम, कि जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है ना, चलने को नहीं होता है तो डंडा लेके चलता है। तदपि तदपि मतलब फिर भी न मुंचती, छूटता नहीं है क्या आशा पिंडम, कि जो आशो का जो पिंड है वो इतना भारी है कि हम छूटता ही नहीं है, चले चलता है बस, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो बताते कि बहुत कठिन है, तो इसके लिए जो पोस्टपोनमेंट है, हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं करूंगा कल करूंगा, कल नहीं करूंगा परसों करूंगा, अभी तो क्या है कि भगवान तो बहुत देखा है लेकिन कल का क्या भरोसा, हम लोग ऐसा जानते हैं कल का क्या भरोसा, लेकिन जब हमारे पे आता है तो हम मानते नहीं। जैसे एक बार युधिष्ठिर महाराज को पूछा था, हाँ पिक्चर भी बनी, देखो कल होना हो उसके ऊपर, तो मतलब है ना कल का क्या भरोसा, तो ऐसा सब मतलब बहुत कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज ने पूछा था कि इस दुनिया के अंदर सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है, तो उन्होंने कहा अहनी हनानी भूतानी गच्छन्ति यमालयं शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। बोला कि जो लोग है सारे के सारे लोग गच्छन्ति यमालयं, मतलब यमराज के घर में जा रहे हैं, उन लोग देख रहे बाप मर रहा है, भाई मर रहा है, माँ बहन दोस्त सास ससुर सब लोग मर रहे हैं, तो ये सब लोग भगवान उसके यमराज के घर जा रहे हैं, लेकिन शेष स्थावरम इच्छन्ति, शेष मतलब रिमेनिंग पीपल, स्थावरम मतलब जो इधर रह रहे हैं वो, इच्छन्ति मतलब इच्छा करते हैं क्या कि मैं नहीं मरूंगा, सब लोग मर रहे हैं लेकिन मैं नहीं मरने वाला, अभी तो बहुत दिल्ली दूर है मेरे लिए, बहुत टाइम है मेरे लिए, तो किम आश्चर्य अतः परम। तो बोलते इससे बड़ा आश्चर्य की क्या बात है, घर कोई मरने वाला है लेकिन फिर भी हमारे को कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ने ये मौका दिया है और ये मौका बड़े भाग्य से मिलता है ना, ये अगर हम लोग इधर आके आज बैठ के बात कर रहे हैं सुन रहे हैं तो भगवान का बहुत बड़ा ना सौभाग्य मानना चाहिए, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई हम लोग भगवान के बारे में इस तरह सुन सके। तो खाली एक छोटा सा चीज़ है कि हमको हमारे जीवन में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, कुछ भी ना माइनस में फिगर नहीं लेके आना, खाली ऐड करना है, योग मतलब टू कनेक्ट, प्लस धन लगाना है उसके ऊपर, धन मतलब पैसा वाला धन नहीं, प्लस चिन्ह जो है एडिशन वो ऐड करना है, बस भगवान का जो जो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अभी हम ज़्यादा और चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय बीतता जाएगा ना, बोलने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें, तो लेकिन बताते हैं कि अगर ये जो मंत्र का अगर हम जाप करेंगे, जैसे सतयुग के अंदर लोग तपस्या करते थे, फिर त्रेता युग के अंदर यज्ञ करते थे, द्वापर युग के अंदर लोग मूर्ति पूजा करते थे, और कलयुग केवल नाम आधार है, कि जो कलयुग के अंदर है केवल हरि नाम करने से सब कुछ होता है, क्योंकि अभी अगर एक घंटा मेरे को आप ऐसा बैठने बोलो तो मेरे से बैठा नहीं जाएगा है ना, आप नीचे से ऊपर बैठ गए तो मतलब तो ना बहुत बहुत मुश्किल है, तो तपस्या करेंगे किधर से ना, पॉसिबल ही नहीं तपस्या करना, फिर यज्ञ कैसे करेंगे, यज्ञ में कैसा होता था पहले, चंदन की लकड़ी होती थी, ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते थे, माचिस और लाइटर से आग नहीं जलाते थे, मंत्र से आग जलती थी, वो ऐसा किधर किसको आता है, एक श्लोक बोलने के लिए बराबर से नहीं आता है हमारे को, मंत्र में क्या बोलेंगे, तो वो भी नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा के लिए ना बड़े बड़ा बड़ा घर होता था, पूरा सेंटर भगवान के लिए यूज होता था, वो सब भी अभी चला गया, वो पॉसिबल नहीं है, छोटे से जगह में लोग रह रहे हैं, किस तरह से पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम है, अभी उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो है पैसा भी देना पड़ेगा ऊपर से। तो बताते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, लेकिन ये सब प्रॉब्लम एक चीज से सॉल्व हो सकता है, वो क्या है, हरे कृष्ण मंत्र। और ये मंत्र इतना ईजी है कि हम चलते चलते कर सकते हैं, ये जैसे दूसरे जो जो भी विधि विधान है वो इस अपने पुराने जमाने में इंडिया में वो पीसीओ होता था ना, उससे हम लोग डायल करते थे, वैसे तो उधर जाके डायल करना पड़ता था एक का सिक्का डाल के, और कई बार सिक्का नहीं है तो मांगना पड़ता दुकानदार से, अरे पांच का छुट्टा देना है तो एक रुपया डालता हूँ मैं, ऐसा नहीं, ये कैसा है मोबाइल के जैसा है, कार चलाओ उसके अंदर सीढ़ी डाला सुनते जाओ बस, कुछ करना नहीं है, बोलते जाओ करते किधर भी करते, मतलब ये नाम इतना ईजी है, इतना ईजी बना दिया है, लेकिन फिर भी हमको डिफिकल्ट लगता है। तो बताते हैं कि जो भी हमको जो पुण्य मिलता था सतयुग में तपस्या करने से, त्रेता युग के अंदर यज्ञ करने से, और द्वापर युग के अंदर भगवान की मूर्ति पूजा करने से, वो सारे के सारे बेनिफिट कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही मिल जाते हैं। और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग के अंदर भगवान का जो अवतार है वो नाम के रूप में हुआ है, तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसा मैं अगर बोलूंगा पानी 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 पानी, जब तक पानी पीऊंगा नहीं मेरा प्यास बुझेगा नहीं, है ना। जैसा बोलते यही है राइट चॉइस, लेकिन जब तक अंदर नहीं जाएगा समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान का नाम अगर हम लोग लेते हैं तो उसका इफेक्ट होता है, मतलब भगवान के साथ होने जैसा ही है। तो इसीलिए अगर भगवान का नाम लेते हैं तो इसके बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, भगवद गीता भी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ये एयरलाइन रेस्टोरेंट हॉल जो है, एक हॉल है यहाँ पे नजदा रोड और इलेक्ट्रा रोड के क्रॉसिंग पे, ग्रीन हाउस और रेडटेक है, उसके बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग है आईफल सुपरमार्केट, उसमें मेजनाइन फ्लोर पे हर शुक्रवार को 11:30 से 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम होता है। और उस प्रोग्राम के अंदर ये आरती होती है, प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, सब मिलते हैं, भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम पे चर्चा होती है और बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसके अंदर आप आने का प्रयास कीजिएगा जब भी आपको समय मिलता है। इस हफ्ते के अंदर कितने 24x7 बहुत सारे घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 घंटे अगर हमने भगवान के लिए ऐसे दे दिए स्पेसिफिकली अलग से निकाल कर, तो कई बार हम लोग 3 घंटे एल्डोराडो में जाके बैठ जाते हैं ना देखने के लिए, चलो दे दिया 3, तो 2 घंटा के भगवान को भी देख लिया तो भगवान भी अपने को देखते हैं कि अरे हाँ ये आया है तो इसका मैं ध्यान रखूंगा, अकाउंट में लिख लेते हैं कि ये आया था मेरे पास ना, तो कभी मैं देखूंगा इसका भला करूंगा। तो प्रोग्राम होता है, उसके अलावा और भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो उसके बारे में सच्चिदानंद प्रभु आपको बता सकते हैं। तो खाली कोशिश कीजिए कभी ना आप आ सकते हैं तो हम यही बताने के लिए आपको आए हैं कि आप भगवान से ऑलरेडी, क्योंकि हिंदू फैमिली में सबसे बड़ा यही एक सौभाग्य है कि ऑलरेडी भगवान को सभी लोग मानते हैं ना। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो कह सकता है कि अरे नहीं मैंने कोई भगवान का के बारे में मालूम ही नहीं है। अलग अलग हम पूजा वगैरह सब करते हैं तो जो भी है, बट ये ऐसे है कि बताते हैं कि स्पेसिफिकली कलयुग के अंदर ये महामंत्र दिया है, ये कलि संतरण उपनिषद में दिया है। और कलि संतरण उपनिषद का मतलब है कलि मतलब कलयुग, संतरण मतलब तारने वाला, और उपनिषद मतलब शास्त्र। जो कलि में से जो हमको बाहर निकालता है उस शास्त्र के अंदर ये चर्चा आती है, जिसमें ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि ये अगर जो भी मंत्र का जाप करेगा वो कलयुग के में उसको वो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे जो सतयुग त्रेतायुग और द्वापर युग में मिलते थे। तो बस इतना कहकर ही हम यहाँ पर ही विराम देना चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का वापस एक बार कि आपने इतना शांति से सुना भी और हमको एक मौका दिया आप लोगों के साथ आने के लिए। तो अभी हम दामोदर अष्टकम करेंगे और उसके बाद थोड़ा कीर्तन करने के बाद हम यही कथा समाप्त करेंगे। पर उसके पहले अगर बाई चांस आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई अगर ऐसा आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, थोड़े 5-10 मिनट के लिए हम लोग उसके लिए चर्चा कर सकते हैं अगर इच्छा हो तो। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सीधा आरती करेंगे और उसके बाद यदि आपको चाहिए तो हम हमारा मोबाइल नंबर वगैरह भी आपको देंगे, तो जो भी आपकी इच्छा है उस तरह से। आप कहाँ काम करते हैं?
हनीवेल।
आप
सेल्स मैनेजर होते
हैं? अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप लोगों का। तो अभी हम आरती करेंगे दामोदर अष्टकम में। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय।